शांति। आज जो मुरली चलने वाली है संडे की अव्यक्त मुरली 25 अप्रैल 2021 कर्मातीत स्थिति की गोई परिभाषा। तो आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित बच्चों से मिलने आए। विदेही स्थिति में स्थित बच्चों को जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे उनको देख रहे हैं, तो देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत, कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से परे, कर्म के बंधन में आने वाली नहीं। कर्म के बंधन में आना अलग चीज़ है और संबंध में आना अलग चीज़ है। फिर बाबा आगे ने इस मुरली में बताया है कि जो इंद्रियां है, इंद्रियां है वो आकर्षण में आकर्षित होकर के बंधन में बंध जाती हैं, अधीन हो जाती हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है आँख का, कि आँख का कार्य है देखना, लेकिन देखने वाली कौन है? आत्मा है। अगर आत्मा जो कराने वाली है, अगर करने वाले जो आँख है उसके अधीन हो जाए तो ये क्या हो जाता है? कर्म बंधन, ये वशीभूत हो जाते हैं, ये कर्म बंधन हो जाता है। तो कैसे हमारी आत्मा, मतलब हम आत्माएं अपने जो कर्म इंद्रियाँ हैं जो 63 जन्मों से द्वापर युग से लेकर धीरे धीरे इतना वशीभूत हो गए हैं, इसके अधीन हो गए हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए बाबा ने बहुत प्रयास किया है। तो उसमें से एक प्रैक्टिस देखेंगे हम कि कैसे हम कर्म इंद्रियों के वशीभूत से उपराम उठें, उसके अधीन न रहें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे हमें आत्माएं हैं और ये सभी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, मतलब आत्मा को जो चाहिए सुख शांति प्रेम आनंद, वो जो है इन कर्म इंद्रियों से के ऊपर डिपेंड है। आँख से अच्छा चीज़ देखना है ना, बोलना सुनना या खाना, तो आत्मा को जो चाहिए वो किससे प्राप्त कर रही है? इन कर्मेंद्रियों से। तो कर्मेंद्रियाँ जो प्राप्त करती है इन आत्मा के कर्मेंद्रिया, मतलब आत्मा जो प्राप्त करती है इन कर्मेंद्रियों के थ्रू, वो जो उसका मूल जो इसेंस है वो क्या रहता है। जैसे हम कुछ बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, तो उसका जो भोजन हम कर रहे हैं बहुत स्वादिष्ट है, उसका मूल इसेंस क्या रहता है, जो सार उसको क्या बोलते हैं कॉन्टेंट, वो क्या होता है? अंत में देखेंगे तो वो तृप्ति आत्मा की, वो सुख, वो क्षणिक मात्र मिलता है उससे, तो आत्मा उस चीज को प्राप्त करना चाहती है। चाहे कोई अच्छा चीज हम देखते हैं, देखने में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बहुत आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे आत्मा को क्या क्या प्राप्ति हो रही है? प्रेम या सुख प्राप्त हो रहा है। तो वो जो आत्मा इन कर्मेंद्रियों के थ्रू प्राप्त कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो आत्मा को जो मिल रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। एनर्जी जो है आत्मा को, जो सुख शांति प्योरिटी के प्रेम की, वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। अभी यदि हम बाबा जो बताएं कि अशरीरी होना, आत्मिक स्मृति में स्थित होके बाप को याद करना, अगर हम इनसे डिपेंड ना होकर इन कर्मेंद्रियों के कनेक्शन यहाँ जोड़ते हैं, तो आत्मा को जो सुख और शांति, जो प्रेम की जो अनुभूति होती है, जो इन कर्मेंद्रियों के थ्रू हो रही थी, अभी कहाँ से ले रहे हैं हम? वहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ से जब हम एक्चुअल में यथार्थ रीति से याद करेंगे बाबा को, सभी तरह से सभी तरफ से बुद्धियों को हटा करके यहाँ से वो शक्ति ले रहे हैं, तब आत्मा को जो है डायरेक्ट वो सुख और शांति और तृप्ति यहाँ परमात्मा से मिल रहा है। पहले जो एनर्जी का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ था, अभी वो धीरे धीरे अंदर जब तृप्त हो गई आत्मा, तो अंदर से बाहर की तरफ होती है एनर्जी। जब अंदर से बाहर की तरफ एनर्जी होती है, तो सभी कर्मेंद्रियाँ क्या हो जाती है? धीरे धीरे शिथिल, तृप्त, सुख का अनुभव करती है। तो आत्मा जो है इस अभी इनके ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो इसका हम एक प्रैक्टिस करेंगे। पहले अपने आप को शांत में स्थित रखेंगे। मैं बहुत शांत हूँ, सुख में हूँ। शांति और सुख में स्थित होते हुए सामने एक ज्योति बिंदु को देखेंगे। मैं आत्मा शांत हूँ, सुख से भरपूर हूँ। अनुभव करेंगे शांति, सुख और प्रेम को। अब अपना बुद्धि योग परम धाम में बाबा से लगाएंगे। ज्योति बिंदु शिव बाबा जो शांति के सागर है, सुख के सागर है, बाबा को देखते रहना है और गहरा फील करना है सुख और शांति प्रेम का। मैं आत्मा तृप्त हो रही हूँ। सुख शांति प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। साथ ही साथ ये अनुभव करेंगे हमारे इस देह की सभी कर्मेंद्रियां सुख और शांति का अनुभव कर रही है। सिर से लेके पांव तक हर एक कोशिकाएं, हर एक सेल्स शांति और सुख का अनुभव कर रही है। शांति। आज एक प्रैक्टिस हम जब भी कुछ खाएंगे, भोजन करने की प्रैक्टिस तो बाद में हम बढ़ाएंगे, लेकिन आज कम से कम एक ऐसी चीज़ जो बहुत हमें पसंद आती है, कोई भी चीज़, फ्रूट हो चाहे टोली हो, उसे जब भी हम खाएंगे तो खाने के पहले ऐसे ही अपना बुद्धि योग शिव बाबा पर केंद्रित करेंगे और सुख और शांति की और तृप्ति का पहले अनुभव करेंगे एकाग्र होकर के, और फिर उस अवस्था में हम उसे खाएंगे। एक बार कम से कम सारे दिन में हम प्रयोग करेंगे, उसे खाएंगे, फिर हम अनुभव करेंगे कि वो जो परमात्म सुख है, वो जो प्यार है, वो तृप्ति है, वो अपने तरफ खींच रही है, या जो हम खा रहे हैं वो अपने तरफ खींच रही है। इसे जब से ये होमवर्क मिला इस भाई को तो 15 दिन से लगभग इस पर अभ्यास कर रहे हैं, तो 2-3 दिन तक तो थोड़ा खींच रहा था जो भोजन कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अभी वो भोजन करने के पहले कुछ भी खा रहे हैं तो पहले बुद्धि वहाँ चली जा रही है, क्योंकि अभी टेस्ट वहाँ का लग रहा है, वो सुख का, वो शांति का, क्योंकि आत्मा को तृप्ति चाहिए जो भोजन के थ्रू वो ले रही है, या कुछ फ्रूट या कुछ टोली के थ्रू ले रही है। तो अगर हम उस तृप्ति को, उस सुख को हम बाबा से जुड़ करके अगर उससे हम ले रहे हैं तो जो खा रहे हैं ना, हमारा बुद्धि योग उसमें नहीं फंस रहा है, उससे तृप्ति का अनुभव नहीं कर रही है, वो तृप्ति का अनुभव वहाँ से हो रहा है। तो जो पहले हम याद में भोजन करने के लिए जो संघर्ष करते थे, वो संघर्ष धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो जैसे ही हम भोजन में हमारी आसक्ति जाती है किसी भी खाने पीने चीज़ में, तो वो भोजन लेते लेते ही पहले अगर बहुत अच्छा चीज़ है मुँह में सलाइवा आ जाता है। बाबा को तो याद बाद में करेंगे, कभी कभी चलते चलते एक टेबल पर बैठने के पहले ही मुंह में ऐसे चालू कर देते। क्यों? क्योंकि हम सभी आत्माएं कर्मेंद्रियों के वशीभूत हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार खाने में, खाने के पहले, तो देखेंगे कि एक ट्यूनिंग, एक जो होता है प्रोग्रामिंग, जैसे भाई साहब बता रहे, सेट कर देते हैं, तो हम भोजन करने का संकल्प भी करते हैं, प्लेट धुलाई करते हैं, टेबल बजाते हैं, उसके पहले से बुद्धि हमारा जुड़ जाता है। थोड़ा पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और भोजन पूरा भी हो गया, प्लेट भी धुलाई कर रहे हैं, ऐसे में क्या है कि जब इसके भोजन के वशभूत हैं तो भोजन जैसे ही मतलब कि गले के अंदर तक आया फिर समाप्त उसका। मतलब फिर बाबा भूल जाते हैं, फिर भोजन भी कहाँ भूल जाता है, लेकिन ये जो तृप्ति है ये लंबा समय तक बना रहता है। जो परमात्मा से सुख का और शांति से जो अनुभव करके जो तृप्त आत्मा कर रही है, हम देख रहे हैं कि प्लेट भी धुलाई कर लिया, भोजन भी कर लिया, प्लेट धुलाई कर लिया, सब कुछ, उसके बाद में ऐसा लगता है कि आत्मा डूबी हुई है उसमें, उस सुख में। नहीं, भूख लगना अच्छी चीज़ है, भूख लगना अच्छी चीज़ है ये ब्राह्मण जीवन में लंबा समय चलने के लिए न तो अच्छा है, भूख लगे तो खाना चाहिए। हाँ, अगर मतलब कि जो भोजन करने के बाद में पेट तृप्त हो गया फिर भी कुछ खाने की देख के इच्छा रहती है तो लोभ कहेंगे उसको। हाँ, तो वो इसमें अभी क्या है कि हम जब तक ना खाने पीने के इसमें इस रस में हम डूबे रहेंगे, तो उसमें डूबे रहेंगे ना, तो इससे हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो इससे ऊपर उठने के लिए पहले तो ये अभ्यास भी करना है, धीरे धीरे हमारा आसक्ति करने के लिए एक कदम जो है ना, बाबा बोलते हैं बढ़ाना भी है। अगर हम कदम नहीं बढ़ाएंगे इससे उपराम होने के लिए, तो हमें ये सफलता नहीं मिलेगी, फिर कर्मातीत स्थिति तो बहुत दूर हो जाएगी हमारे लिए। तो एक कदम आगे बढ़ाना है, त्याग के लिए त्याग करना है इन सब चीज़ों का, फिर उस त्याग को गैप करने के लिए, क्योंकि जो फीलिंग है, मतलब कोई चीज़ त्याग करते हैं तो उसके एवज में हमें उसको फील करना पड़ता है, उसके जो गैप है उसको फिलअप करना होता है, नहीं तो फिर वो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, शायद आगे हो प्रैक्टिस करते करते। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी हमारे अंदर धीरे धीरे वीकनेस आ सकती है, इसलिए भूख लगना भी जरूरी है। अगर नहीं भूख लगी तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए हेल्थ इश्यूज़ के लिए। हम बात कर रहे हैं कि मतलब कि वशीभूत होने की बात कर रहे हैं किसी कर्मेंद्रियों के, जो हवा चाह जाती है खाने पीने देखने की, जो उसमें डूबती है आँख, उससे ऊपर हम होने के लिए। और केवल खाने पीने के नहीं बता रहे हैं हम, जैसे बाबा आगे इसमें बताए हैं कि इंद्रिया जो है आकर्षित होती है किसी वस्तु व्यक्ति को देख करके, उसमें फंसती है। तो जो अगर सपोज किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा है देखने में, अगर उसको उस जो एनर्जी है उसको हम फील करें, एब्जॉर्ब करें उसको, जो अच्छा देखने में जो हमें फील हो रहा है, जो फील का जो कंटेंट है, जो सार हो क्या रहा है, एक प्रेम का, तो ये जो है ना, अगर इसको हम कनेक्ट होके बाबा से वो प्रेम का गहरा फीलिंग कर रहे हैं, उस एनर्जी को महसूस करें और उसके कंपेयर में इस एनर्जी को महसूस करें, दोनों के अंतर को देखें, तो ऐसा रियल में अनुभव होता है कि जैसे ये जो देहधारी का जो आकर्षण के वशीभूत जो जा रही है ना कर्मेंद्रिया, उसमें ना तमो प्रधान वाइब्रेशन है, एक दुर्गंध जैसा है, और वो जो है परमात्म प्रेम है, वो डिवाइन है, बहुत प्योर, जो शुद्ध है, बहुत अच्छा फील देती है। तो वे दोनों के एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। अगर इसको महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे फिर हमारे जो कर्मेंद्रियाँ धीरे धीरे मतलब कि खिंचाव नहीं होगा, वशभूत नहीं होंगी, इससे हम उपराम उठेंगे। तो मेन सार यही है कि बाबा से जो कुछ चाहिए वो बाबा से हमें लेना है, यथार्थ विधि से, मतलब कि चारों तरफ से बुद्धि को हटा करके एक शिवामा में ही अपना मन बुद्धि को केंद्रित करना, और रियल और सुख और शांति को अनुभव करना, उस तृप्त करना। और इसके लिए सबसे मतलब कि घड़ी घड़ी क्या हमें ज़रूरत है कि पहले हम ऐसे ही नहीं देखें कि हम आत्मा हैं, बिंदी नहीं देखें, पहले शांत स्वरूप में पहले स्थित हो गए, शांत हूँ मैं, सुख हूँ, फिर बाद में आत्मा हूँ। फिर जब शांत में हम रहते हैं, सुख की अवस्था में रहते हैं, तो बाबा की याद सहज होती है और आत्मिक स्मृति भी सहज होती है। अगर अशांत है, मन डिस्टर्ब है, उस समय आत्मात्मा करते रहेंगे तो कुछ होता नहीं है। तो पहले अपने को कंफर्ट जोन में ये लाने का पहले प्रयास करना, जो आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है उसमें, फिर कनेक्ट करना बाबा से, फिर आगे देखते हैं। इसके आगे बाबा ने बताया कि कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, देह के पदार्थ, इसके संबंध में मतलब कि संबंध या बंधन से मुक्त होना, लौकिक या अलौकिक दोनों संबंधों से न्यारा होना। तो बाबा ने इसमें बताया कि संबंध शब्द अच्छे हैं, लेकिन अगर संबंध में अधीनता है तो वो बंधन बन जाता है, उसके हम वशीभूत बन जाते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे, इस एग्जाम्पल में शायद इस मुरली के बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। निखिलेश भाई जी भी अलर्ट अलर्ट हो जाए, आपके ऊपर दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ मधुबन में रहते रहते सभी भाई बहनों के संबंध संपर्क में आते हैं, ऐसे ही हम समझिए कि निखिलेश भाई के संबंध में आए, निखिलेश भाई जी के संबंध में आए, फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई, फिर हमने देखा कि इनके पास जो है ना कंप्यूटर भी है, प्रिंटर भी है। तो एक दिन हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ 8-10 पेज के डॉक्यूमेंट है वो हमें प्रिंट आउट लेने हैं, तो इनके पास हम गए निखिलेश भाई जी के पास। तो इनके पास गए तो इन्होंने मतलब कि क्या बोला, इनके मन में ऐसा आया होगा कि 1-2 पेज होता तो ठीक होता, अब 8-10 पेज कैसे निकालें। सपोज इनके ऊपर कोई इंचार्ज है, अगर उन्होंने इनको डायरेक्शन दे रखा है कि इतना मतलब कि आपको ऐसा नहीं करना है, इनके दिमाग में ये भी है कि इतना ज़्यादा प्रिंट आउट किसी को देना नहीं है, उस श्रीमत का भी सपोज पालन कर रहे हैं, तो हमें कह दे रहे हैं कि नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चूँकि हम इनके संबंध संपर्क में है तो शायद हमने भी पहले इनका सहयोग दिया है, सहयोग की लेन देन है, कभी इनका जरूरत पड़ा तो हमने इनकी मदद की, तो उसके एवज में हमारे मन में एक कामना, एक इच्छा आ गई जो बाबा बताएं कि फल की इच्छा वशीभूत बना देती है। तो इन्होंने हमारा कार्य नहीं किया तो हमारे मन में किस तरह के थॉट चलेंगे, अभी आने दो उनके हमारे पास। ठीक है, तो इसको ना हम दो स्थिति में, दो सिचुएशन में देखते हैं अलग अलग। इसको हम दो भाग में देखेंगे, मतलब निखिलेश भाई जी की दो अवस्थाओं के देखेंगे इसमें। एक तो ये है कि यदि ये हमारे मतलब कि संबंध के अधीन होते हैं, यदि ये चाहते हैं कि ये कहीं नाराज ना हो जाए, आगे के लिए मेरा काम नहीं करेगा, अगर इनके अधीनता भी है और स्वार्थ भी है, तो संभावना ये बढ़ जाती है कि ये अपने बिना इंचार्ज को बताए हमें प्रिंट आउट 8-10 निकाल के फटाफट दे दें, छिप छिपा के, दोस्ती निभाने के लिए, नाराज न हो जाए इसके लिए, पीछे एक मतलब कि नाराज न हो जाए, बाबा ने नाराज की भी बात कही है, इसको देखते हैं आगे। तो ये काम ये कर देते हैं, फिर अब ये हमारे पास आते हैं तो शायद ये भी हमें कुछ ऐसा करवाएं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, छिप छिपा के, चोरी, जो भी है। तो ये क्या हो जा रहा है, कर्म बंधन, कार्मिक अकाउंट। एक दूसरी स्थिति है, इस कर्म बंधन से बचने के लिए हमें क्या करना है कि ना वो कर्म बंधन में आए और ना हम कर्म बंधन में आए। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस करना है हमें, बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे कि पहले तो ये सोचना है कि हम जब बाबा के बने तो तन से मन से जैसे भी है समर्पण हुए बाबा के प्रति, तो हमारा जिम्मेदार कौन है हमारी पालना के लिए, हमारी हर एक सहयोग देने के लिए। पहले तो बुद्धियोग हमारा बाबा की तरफ जाना चाहिए कि हमारी हर आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला कौन है, शिव बाबा है। तो जब भी हमको किसी के पास जाना है कोई चीज़ के लिए, कोई सहयोग के लिए, कोई वस्तु के लिए, तो सबसे पहले किसे बताने का फर्ज होता है हमारा, बाबा को, कि बाबा मुझे ये वस्तु चाहिए, ये कार्य हमें करना है। बाबा को बताने के बाद में हमें निमित्त मात्र निखिलेश भाई जी के पास जाना है। जब निखिलेश भाई जी और हमारे बीच में बाबा को रखा, और फिर इन्होंने अगर सपोज शायद कर भी सकते नहीं भी करें, तो हमारा संकल्प इनके प्रति नहीं जाएगा कि इन्होंने हमारा काम क्यों नहीं किया। तो जो भी नाराजगी, जो भी कंप्लेन है किससे होगा, क्योंकि हमने किसको बुलाए, शिव बाबा को। तो वहाँ एक हम प्रैक्टिस करके देखेंगे, कभी भी ऐसी सिचुएशन आती किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले बाबा को बताना है कि बाबा हमें ये करना है, फिर निमित्त मात्र उनके पास जाना है। तो वो व्यक्ति हमारा कार्य करे न करे, उसके प्रति एक निगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। तो ये काम ये करना है कि बाबा को हमें बताना है। दूसरा ये अपने लिए हमें किस तरह से तैयार करना है। बाबा ने हमें बताया कि बच्चे आप 24 आवर सेवा पर हो। बाबा ने हमें सेवा के लिए रखा है। नेक्स्ट टाइम अगर सपोज ये हमारा कार्य नहीं किए, कोई बात नहीं, हमने बाबा को बताया था नहीं किए, अगर ये हमारे पास आते हैं तो हमारा फर्ज है निस्वार्थ भाव से किसी की भी सेवा करना जो कर सकते हैं, निसंकल्प होके कायदे में रह करके वो सेवा करना, क्योंकि हम सेवा में हैं। कोई भी भावना नहीं, निस्वार्थ भावना है। इसके लिए बाबा ने पिछले दिनों मुरली स्लोगन में आया था करण करावनहार की स्मृति, कि हमसे करवाने वाला कौन है? बाबा है। तो अगर बाबा हमसे कोई भी कार्य करवा रहे हैं और मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कोई प्राप्ति के लिए। ये हमें स्मृति होनी चाहिए कि हमें बाबा हमसे बाबा करवा रहे हैं। तो अब व्यक्ति हमारे सामने कोई भी कैसा भी आ जाए, चाहे वो हमारे काम का है चाहे नहीं काम का है, चाहे किसी से हमारा काम है या नहीं है, कोई पहचान का है नहीं पहचान का है, हमारा फर्ज है सेवा करना दिल से, वो भी दिमाग से नहीं, दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा देना। कायदे में रह के, जैसे कमलेश भाई बता ना, दूसरा ये कि ये भी देखना है कि कायदे में हम तब रहेंगे जब हम स्वयं भी किसी के अधीन नहीं होंगे, किसी संबंध के अधीन नहीं होंगे। अगर जितना हो सकता है किए, अगर उसके आवश्यक उससे ज़्यादा उनको चाहिए, अगर उसमें नाराज होते हैं तो भी बाबा जाने, क्योंकि करण करावनहार कौन है? बाबा है। तो एक बल एक भरोसा, यहाँ पर ये लॉ काम कर रहा है हर जगह। तो इससे हम कर्मेंद्रिय कर्म बंधन से धीरे धीरे मुक्त होंगे। तो क्या अभ्यास बताया हमने? जो भी काम करना है बाबा को बताना है, हाँ, कनेक्शन करके सिर्फ फिर बाद में रिलेशन में आया है, बहुत अच्छा बताया है। हाँ, इसको हम कमलेश भाई का कहना है, इनका प्रश्न है कि हमारा तो कनेक्शन ठीक है लेकिन सामने वाले का कनेक्शन ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम आगे बताएंगे, आगे आएगा पॉइंट। तो अभी नेक्स्ट है, बाबा ने बताया कि नेक्स्ट कि अगर कर्म बंधन और कर्म संबंध के अगर राज को नहीं जानते हैं तो नाराज होते हैं। तो एक तो ये हमें कर्म बंधन और कर्म संबंध जो है उसके राज को हमने जाना कि करण करावनहार बाबा है। तो चाहे हम यथार्थ रीति से यथाशक्ति जो हम सहयोग दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर कर्म बंधन को ध्यान में रखते हुए आगे चल रहे हैं तो सामने वाला कोई नाराज भी हो जाता है तो भी बाबा उसे ठीक करेंगे। एक तो ये, दूसरा एक, हाँ जी, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाबा है। दूसरा एक अलग से एक राज को जानते हैं, एक अनोखा राज। एक मुरली में अव्यक्त मुरली में बाबा ने कभी बताया है, मन बाबा उसमें देख रहे स्टार्टिंग में ही, वो डेट नहीं याद है, कि बच्चों का जो मूड है सारा दिन में चेंज होते रहता है, कभी क्या है कभी क्या है, एक मूड में नहीं रहते हैं। तो उसमें बाबा ने बताया था कि एक मतलब कि अवस्था में स्थित होने के लिए अपने संपूर्ण स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो, बाबा ने ऐसा उसमें बताया है। तो उसमें आगे देखते हैं, ये आत्मा है। अब सुबह से लेके रात तक अलग अलग आत्मा के रूप है। सुबह अमृत वाले योगी बन जा रहा है ना, मुरली सुनते समय स्टूडेंट बन जा रहा है, फिर नास्तिक, फिर कभी कभी अच्छे विचार आ रहे हैं, फिर कभी कभी उसमें निगेटिव थॉट भी आ रहे हैं, कभी कभी अशुद्ध संकल्प भी आ रहे हैं, कभी कभी क्रोध के भी, जैसे जैसे सिचुएशन जैसे जैसे व्यक्तियों के संबंध संपर्क में आ रहे हैं वैसे वैसे मन का स्वरूप क्या हो रहा है? धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो मन के अलग अलग रूप कह सकते हैं सारे दिन में, जो अलग है एक ही व्यक्ति के, तो अलग 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 मन के रूप हैं। अगर इसको हम एकांत में कभी एब्जॉर्ब करें मन की इस स्थिति को कि हमारा सारे दिन में कितने कितने रूप हैं, तो ये देखेंगे कि जितने जितने हमारे रूप है मन के, एग्जैक्ट इसी तरह ये हमारा जो बताया अंदर का है, अंदर की दुनिया है, अंदर की दुनिया है ये, एक बाहर की दुनिया जो हम समन संपर्क में आ रहे हैं। तो ये देखेंगे कि जो जो हमारे मन के जो स्वरूप है अलग अलग, एग्जैक्ट उसी प्रकार की आत्माएं, उसी स्वभाव संस्कार की आत्माएं हमारे समन संपर्क में है। अगर हमारे मन में कभी विचार बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऊंची क्वालिटी के आ रहे हैं, ज्ञानी और योगी का आ रहे हैं, तो हमारा हमारे संबंध में वो भी आत्माएं हैं। अगर हमारे जिस समय संकल्प साधारण हो रहे हैं तो वो ऐसे भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं। अगर हमारे मन में कभी अपवित्र ख्याल आ रहे हैं तो कहाँ ना कहाँ वो भी हमारे कनेक्शन में है, क्योंकि जो हम अंदर है वही हम बाहर देख रहे हैं। हमारे संबंध संपर्क में, हमारे जीवन में बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन ठहराव जो ठहर कौन जाते हैं हमारे जीवन में, जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर की क्वालिटी है, जो हमारे अंदर के स्वभाव संस्कार है, उसी तरह के व्यक्ति हमारे संबंध में। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति में ये कमी है, उस व्यक्ति में वो कमी है, ऐसे देख रहे हैं, तो वो देखना है कि वो समझना है कि ये जो है बाहर जो दिख रहा है व्यक्तियों में, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, वो दर्पण है हमारे लिए, वो हमारा ही प्रतिबिंब है। अगर उस प्रतिबिंब को स्वच्छ करना है, ठीक करना है, तो उसके पहले हमें अंदर झांक करके देखना है, उसे ठीक करना है अंदर में, उस स्वभाव को, उस संस्कार को। और अंदर हम ठीक करेंगे, अंदर हम क्लीन करेंगे, तो बाहर अपने आप परिवर्तन होगा। इसको बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अंदर हमें एक एक स्वभाव संस्कार को चेक करना है। एक्चुअली जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आ रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि उनके अंदर ये कमियां हैं, उनके अंदर ये कमजोरियां हैं, वास्तव में हमारे लिए वो हेल्पफुल है। वो तो दिखा रहे हैं कि आपके अंदर क्या है, इनर में आपके अंदर क्या चल रहा है, तो वो तो हमारे लिए दर्पण है। उसको देख करके हम अपने आप को चेंज करना है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने रखा, इसमें एक प्रश्न भी आ सकते हैं कि कोई, मतलब जरूरी नहीं है कि सामने वाला कोई व्यक्ति में कोई बहुत कड़ा संस्कार है, शायद हमारे अंदर नहीं है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें एक, जैसे साइंस में एक बताया जाता है, हर एक नियम का अपवाद होता है, एवरी रूल्स हैज एक्सेप्शंस, उसके एक्सेप्शंस होता है। तो ऐसा कभी कभार शायद हो, बाहर कोई व्यक्ति हमारे संबंध संपर्क में है, उसके अंदर जो बहुत बड़ा कड़ा हो, गुड़ हमारे अंदर नहीं हो, लेकिन फिर भी वो दर्शा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं हमें इस समय, आज के डेट में वो नहीं है हमारे अंदर कमी कमजोरियाँ, फ्यूचर में किसी न किसी कोने में है, अंदर में अवचेतन मन में, वो बाहर आ सकता है। इसलिए उसकी तरफ भी ध्यान न देते हुए अपने अंदर जो विशेषता है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। सपोज यदि हमारा संस्कार है सच्चा बोलने का, एकदम सच्चा बोलने का, लेकिन हमारे संबंध में कोई व्यक्ति है जो बहुत झूठ बोल रहा है, हमें क्या करना है कि अपने अंदर जो सच्चाई है उसको अंदर और ज़्यादा डेवलप करना है, और ही ज़्यादा, क्योंकि कहाँ ना कहाँ कभी कभी चांस है, हमें झूठ बोलने के चांस हो सकते हैं कोई ना कोई सिचुएशन में, इसलिए और स्ट्रॉन्ग करना है। जब अंदर हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बाहर का परिवर्तन अपने आप होगा, बाहर जो दिख रहा है। हमने बचपन में सभी ने ये कोई ना कोई स्टोरी या कोई सीरियल देखे होंगे, या कोई स्टोरी भी सुने होंगे कि कोई, मतलब कि असुर को, राक्षस को मारा जा रहा है युद्ध में, बहुत सारे बाण पे बाण, अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे हैं, वो कभी कभी गायब हो जा रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, वो जब तीर जा रहा है वो अदृश्य हो जा रहा है, या उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जा रहे हैं फिर भी जिंदा हो जा रहा है। बहुत प्रयास किया जा रहा है देवताओं के द्वारा, किसी हीरो के द्वारा मारने के लिए, वो नहीं मर रहा है। अंत में कोई ना कोई उस देवता का कोई कुल देवता आ जाता है, कोई गुरु आ जाता है, उसको बताता है, उसको मार्ग उसका मार्गदर्शन करना है, करता है कि आप जिसको मारना चाहते हो ऐसे नहीं मरेगा वो, इसके जो प्राण है ना, उसके प्राण है कहीं और किसी दूसरी मूर्ति छोटी सी उसमें बना के उसकी प्रतिष्ठा की हुई है, या स्टोरी में सुने हैं कि उसका जो प्राण है ना कोई पिंजरे में तोता है वहां पर फलाने स्थान पर, वहां उसके अंदर कैद है, अगर उसको नष्ट करेंगे तो ये नष्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि बाहर हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि इनके अंदर ये कमी है, कमजोरियां हैं, इनके अंदर ये अवगुण हैं, लेकिन हम उनको कितना भी प्रयास करें, वो एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, लेकिन हमें वैसे सेम दिखाई देगा। तो रावण ने क्या किया है, उसके प्राण प्रतिष्ठा हमारे अंदर कर रखा है अवचेतन मन में, अगर वहां जाके उस हिट करेंगे तो बाहर जो हमें दिख रहा है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें कि बाहर जो भी हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं हैं वो एक्चुअली हमारे लिए प्रतिबिंब, हमारा ही प्रतिबिंब है, एक्चुअली हमारे अंदर ही मन के अलग अलग रूप है, वो अलग अलग स्वभाव संस्कार है, जो अंदर की दुनिया है सूक्ष्म में, जो हमारे स्वभाव संस्कार कभी अच्छे चल रहे हैं कभी बुरे चल रहे हैं, वही स्थूल में हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं हैं। तो उन्हें ठीक करना है तो पहले अंदर ठीक करना है, अंदर ठीक करेंगे तो बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो किसी से हम नाराज नहीं होंगे, और जो हम हमारी एनर्जी दूसरों को देखने में जा रही है वो एनर्जी को अपने परिवर्तन में लगाएंगे तो जल्दी परिवर्तन होंगे। तो इस तरह से कर्म बंधन से धीरे धीरे ऊपर हम उठेंगे। दूसरा बाबा टाइम, हाँ, इसमें बाबा ने मुरली में बताया है कि कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियों के बारे में बाबा ने बताया है कि भिन्न भिन्न रस्सियां, जैसे कि ऐसा है नहीं हो, ऐसे ही ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मेरे द्वारा ऐसा क्यों होता है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। तो ऐसे ऐसे जो हम संकल्प करते हैं वो मतलब कि हम सूक्ष्म रूप से वो कर्म बंधन अपने आप में बांधते जाते हैं, वो बेड़ियां हमारे लिए है। ये तो ये हो गई। दूसरा बात ये भी है कि हम सारे दिन में जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं तो हर एक के बारे में अपना हमारा एक अलग अलग एटीट्यूड है कि फलाने व्यक्ति ने इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ये हमने एटीट्यूड बना के रखा है उनके कुछ देख करके, उनके हॉबी को, उनके व्यवहार को। और जैसे ही हम उनके सामने जाते हैं वो जो संकल्प है ऑटोमेटिक वो चलने लगते हैं, वो रिकॉर्ड जो चलने लगता है। तो ये भी हमारे लिए एक कर्म बंधन बन जाता है, हम उस सूक्ष्म रस्सियों से बांध देते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, हमारे समन समर्ग में बहुत सारे आत्माएं आ रहे हैं, सबको देख रहे हैं, अच्छा इनके अंदर ये है, इनके अंदर ये है, इनके अंदर ये है, एक रस्सी बांध ले रहे हैं। ये सारे दिन में तो ये कर्म कर रहे हैं, हम बांध रहे अपने आप को, फिर ऊपर उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मा समझने का प्रयास, बाप को याद करने का। तो ये जो रस्सियां हैं ना बांध रखी वो नीचे खींचते हैं, फिर हम कहते हैं हमसे बाबा की याद नहीं होती, हमारा योग का चार्ट नहीं बढ़ता है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें ये भी प्रैक्टिस करना है कि जो भी व्यक्ति देखे, जो भी आज तक जो भी हमने एटीट्यूड किसी के प्रति बनाया, आज के बाद फुल स्टॉप। अब जब भी किसी व्यक्ति को देखें, जब उसके पुराने स्वभाव संस्कार याद आ रहे हैं, सपोज कोई दो आत्माएं हैं, जब भी हम जा रहे हैं उनके सामने तो हमारी निंदा करने के, हमारी निंदा करते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो हमारी निंदा करते हैं, तो हमारे मन में ये बार बार पहले आ रहा था कि ये व्यक्ति हमारी निंदा करता है, जब भी देखेंगे ना तो क्या करेंगे, ये हमारी निंदा ही करता है। तो इसके अपोजिट हमें संकल्प करना है, जैसे ही व्यक्ति दिखे ये तो हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, अपने आप को थॉट देना है, विचार देना है, ये तो हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर जो भी कोई व्यक्ति के संस्कार अलग दिख रहे हैं, चाहे ये तो मोबाइल पे बहुत बात कर रहा है, ये भाई ने बहुत अच्छा है, हमेशा काम की बात करता है, अपने आप को थॉट दें। जो जो बंधन हम बांध रखे हैं सूक्ष्म में, वो एक बाबा बताए कैंची का काम करेगी ये सारे बंधन को काटने के लिए। जो भी व्यक्ति का स्वभाव संस्कार दिख रहा है उसका अपोजिट हमें थॉट देना अपने लिए, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। इवन उसी के लिए नहीं, बल्कि जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, कोई काम वाले माई आ रही है, कोई भाई आ रहे हैं, कोई भी जब भी हमारे आसपास गुजर रहे हैं, एक अजबा जाप बना लेना है कि देने की भावना, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये बहुत बहुत प्योर आत्माएं हैं। अगर ऐसा अंदर संकल्प चला रहे हैं पॉजिटिविटी, तो सुबह से लेकर शाम तक देखेंगे हमारी अवस्था बहुत ऊपर जा रही है। फिर हम बाबा की याद करेंगे ना तो बहुत ईजिली याद करते हैं। अगर हम इसके अपोजिट घृणा भाव या कोई कमी कमजोरियाँ देखते हैं, किसी के प्रति एटीट्यूड बना के देखते हैं, वो हम बंधन बांध लेते हैं, तो धीरे धीरे हमें नीचे लेके आती हैं, वो बांध के रखती हैं, ऊपर उड़ने नहीं देती। तो इसलिए हमें ये अभ्यास करना है कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है। कोई भी व्यक्ति देखे, अगर हमारे वो संकल्प चलने के पहले उसके उसी से रिलेटेड उसका अपोजिट संकल्प करें कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति अमृत वाला, अगर ऐसा संकल्प रहा कि ये भाई ना अमृत वाला तो करता नहीं है, क्या योगी है, तुरंत ही उसके पहले ही संकल्प दे ये भाई बहुत अच्छा योगी है। थॉट देना अपने आप को, ये भाई बहुत अच्छा योगी है, वे बहुत अच्छा ज्ञानी है, ये रियल बता रहे हैं। इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जो बाबा इस मुरली के लास्ट ने बताए हैं कि विश्व कल्याण की सेवा, स्व सेवा और सभी की सेवा, निरंतर हमसे सेवा होती रहेगी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ये कर्मातीत स्थिति के बारे में जो भी बताया, एक लास्ट है स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाना। तो इसको एक काफ़ी इसमें डीप है, इसको हम कल साकार मुरली है उसमें थोड़े दो पॉइंट्स लिए हैं, तो पहले इसको हम कवर करेंगे, मन को ऑर्डर प्रमाण कैसे, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। हमने बहुत सारे क्लासेस सुने हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उस प्रैक्टिस के आधार पर जो हमने ये निकाला है अनुभव के आधार से, वो कल हम पहले उसको रखेंगे, फिर बाद में साकार मुरली का। ओम शांति।